जय बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन भज जन रंजन। यशोदा नंदन भज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। पिछले क्लास में तो कुछ ज्यादा पढ़े नहीं थे आप लोग, क्या किए थे? हाँ तो सबको याद हो गया। आप लोग इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा, और एकदम से ऐसे बैठे हैं देखना पड़ता है। तभी उसके पहले क्लास में क्या पढ़े थे? कौन से अंक का चर्चा हो रहा था? शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा सद्धर्म प्रक्षा ना। इसके बाद है तीर्थ स्थान में निवास, भक्ति गंग का नाम है तीर्थ स्थान में निवास, इसको चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास या 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, पखवाड़ा यानी 15 दिन, वो वैकुंठ लोकों को जाता है, उसे सारूप्य मुक्ति यानी नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मल का एक क्षेत्र है के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवगण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ तो सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है और इस तरह गंगा जल निरंतर बहता है और भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रभावित होता है वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो ये तीर्थ स्थान में निवास के बारे में बताया गया है। आप लोगों को याद होगा शायद पहले बताया गया था 5 अंग महत्वपूर्ण है, कौन कौन से 64 भक्ति में कौन से 5 पंचांग भक्ति कहा गया है? नहीं, 5 अंग जो महत्वपूर्ण है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ 64 भक्ति अंगों में शुरू में मैंने बताया था पंचांग भक्ति कौन से महत्वपूर्ण है, उसके बाद मैंने बताया था एकांग भक्ति कौन सी है, एकांग भक्ति मैंने बताया था तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, हाँ धामवास साधु का संग भागवत श्रवण हरिनाम संकीर्तन अर्च विग्रह की सेवा करना, 5 अंग जो भक्ति के ये महत्वपूर्ण है। 64 भक्ति में क्या है ये 5 महत्वपूर्ण है, इसमें और 5ों में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है एकांग भक्ति किसको कहा गया हरिनाम संग तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं तीर्थ स्थान में निवास, वही है धाम निवास, उसमें से एक ही है ना। तो ये महत्वपूर्ण बताया गया है 5ों अंगों को कि 64 भक्ति के नियमों का कोई पालन नहीं कर पाता है तो कम से कम ये 5 का तो नियम पालन करना चाहिए। तो उसमें से आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या है तीर्थ स्थान में निवास। तीर्थ स्थान में निवास तो यहाँ पर स्कंद पुराण में बताया गया है क्या कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास या 1 मास या 1 पखवाड़ा यानी 15 दिन में रह लेता है वैकुंठ लोक को जाता है। तो यहाँ रहने का क्या मतलब है? ऐसे तो वहाँ पर रहने वाले जितने लोग रूम लेकर रह रहे हैं या किराए पर रह रहे हैं वो सब वैकुंठ चले जाना चाहिए, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग? रहने का मतलब क्या है? तीर्थ स्थान में निवास का मतलब क्या है? चेतना के स्तर पर क्या मतलब है? तीर्थ स्थान में निवास का क्या मतलब है?
भक्ति करना, भागवत चरण करना, वहां
जाकर साधु संग करना, वहां जाकर साधुओं का संग करना, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए उनके बारे में श्रवण करना है ना। बोलते ना प्रभु जी उनका संग प्राप्त हो गया, संघ का प्राप्त तो क्या हो गया? शरीर से शरीर टच हो गया। हाँ संघ का मतलब क्या होता है? हाँ आध्यात्मिक चीजें, उनसे आध्यात्मिक गुण को सीखना, शिक्षा लेना, उपदेश सुनना और उसको अपने जीवन में अपनाना, इसको बोला गया संघ। और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति के साथ गले में गले हांडल के घूम रहे हैं तो उसका संघ हो गया। जैसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो बुरी संगत में आ गया है। बुरी संगत का क्या मतलब निकालते हैं? बुरे व्यक्तियों से गलत चीजें सीख रहा है ना, उसको बोलते हैं बुरी संगत, है कि नहीं? अच्छी संगत का क्या मतलब होता है? अच्छी जगह में जाकर अच्छी चीजें सीखते हैं। अब तो हमारा बेटा जो है इस्कॉन के मंदिरों में जाता है, तिलक लगाता है, हमेशा माला करता रहता है, बिगड़ गया है। तो बोलते हैं ना कई लोग, बच्चे झूठ बोल के जाते हैं कि पापा मेरे मित्र का जो है ना जन्मदिन है, हम रात को बनाएंगे, रात को ही रुकूंगा, और मंदिर आता है वो मंगल आरती अटेंड करके जाता है। आजकल ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि संग प्राप्त करने का यह ना उससे प्रभावित हो जाना। प्रभाव का मतलब क्या होता है, आपके जीवन में परिवर्तन है ना, मौसम का गहरा प्रभाव है। तभी तो हम लोग टोपी लगाए हैं, तभी तो हम लोग ने अपने आप को ढका है, जिसका मतलब हम पर प्रभाव पड़ रहा है ठंड का, है ना। तो इसलिए धाम में जाकर जब तक साधु संग नहीं करते हैं तब तक धाम निवास पूर्ण नहीं माना गया है। तो धाम में जाकर साधु संग करना चाहिए। तो साधु संग का मतलब है उनसे जाकर जिज्ञासा करना। यहाँ पर जो बताया गया है कि 6 मास रहता है, तो 6 मास रहकर 6 मास वही कार्य करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 6 मास में 2 मास साधु संग है, 4 मास पिकनिक हो गया, उन्हें खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे, नहीं, जितने भी दिन रहना है प्रतिदिन संग करना। इसलिए कई बार ऐसा बताया गया, आचार्य बताते हैं हमारे, 3 दिन से ज़्यादा वृंदावन में नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्या होगा 3 दिन से ज़्यादा रहेंगे तो? क्यों वो 3 दिन क्यों नहीं करेंगे? हाँ क्यों, ऐसा क्यों, बाद में ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता है? मेरा प्रश्न है वो 3 दिन ऐसा क्यों नहीं होता है और 3 दिन के बाद ही क्यों होता है, प्रश्न ये। जो भी आप बोल रहे हो सही बात है, 3 दिन के बाद क्यों होता है, 3 दिन पहले, 3 दिन क्यों नहीं होता है, मेरा प्रश्न। वृंदावन के प्रत्येक वस्तु का दर्शन आप कर सकते हो, 3 दिन में सब कार्य हो जाते हैं, है ना। 3 दिन के बाद क्या होता है, आप खाली हो, आप दोष दर्शन होगा, क्योंकि आपने अब दर्शन तो कर ही लिया है भगवान का, धाम का परिक्रमा भी कर ली, मुख्य मुख्य मंदिर चले गए, आप दोष दर्शन करेंगे। अरे देखो यहाँ कितने सुअर हैं, यहाँ के लोग सब गुटखा खाते हैं, हम तो दिव्य हैं, है ना, फिर दूरदर्शन शुरू हो जाता, प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए 3 दिन से ज़्यादा रुकने के लिए मना किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत दिव्य चेतना में है तो ज़्यादा दिन भी रह लेता है, इसलिए वृंदावन में निवास करने के लिए गुरु से आगे लेना जरूरी है। या जो 6 महीने और 1 महीना और 15 दिन के बारे में है, या 3 दिन के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए जा रहे हो, उसके लिए गुरु की आज्ञा की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? गुरु हमारा स्तर जानते हैं, कभी कभी गुरु मना कर देते हैं कि आप जाने की आवश्यकता नहीं, आपको आप यहीं रहिए, वृंदावन क्या कर रहे हैं जाके। एक भक्त को मना किया था हमारे गुरु महाराज ने कि आप वृंदावन मत जाइए अभी, लेकिन जबरदस्ती गए हो। वृंदावन जाने के बाद उनका भजन ही चैंटिंग ही बंद हो गया। क्यों? वही दोष दर्शन। जिसकी चेतना शुद्ध नहीं है वो धाम में जाएगा तो अशुद्ध चेतना से ही कार्य करेगा, है ना, चिंतन उसका दिल्ली का होगा, है कि नहीं। तो कभी कभी हम लोग वृंदावन में घर लेते हैं, निवास करेंगे, पर निवास नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो दिल तो यही है और लिख रहा था आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? इफ यू लॉस्ट योर हार्ट इन वृंदावन तो यहाँ क्या कर रहे हो, वहीं रहो, है कि नहीं। इनका मतलब हृदय यही है, वहाँ पर कुछ गए तो अच्छा लगा था बस, नॉट लॉस्ट। तो धाम में निवास के लिए जब तक पूर्ण शुद्ध चेतना नहीं होती तो धाम में आप निवास नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हम ऐसे कुछ दिनों के लिए वहाँ साधु संग के लिए जा सकते हैं। इसलिए वृंदावन का जब ट्रिप ले आते हैं या मायापुर जगन्नाथपुरी का ट्रिप ले आते हैं तो जाना चाहिए। हमारे अंदर एक बहुत बड़े भक्ति का अंग का पालन हो जाता है ना। साधु संग क्यों, कितने सारे भक्तों के साथ जाते हैं, वह लीला स्तर का श्रवण करते हैं, है ना, वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है, रुचि बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है स्थानों को देखते हैं तो। जैसे मैं आपको चाइना के बारे में बताएं कि चाइना में ना सांप खाते लोग, ठीक है, तो आप चलो ठीक है अच्छी बात, लेकिन चाइना गए आप देखें लोगों को सांप खाते हुए, तो उस बात पर आपकी श्रद्धा बढ़ेगी ना जो बात बताई गई है कि हाँ ये बात तो पक्का है, मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। वैसे ही वृंदावन में जब लीला स्थलों के बारे में श्रवण करते हैं, भक्तों से सुनते हैं कि वो इस स्थान में लीला किए थे, इस स्थान में लीला किए थे, ये लीला किए थे, जब सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए भक्तों के साथ जाकर उन लीला स्थलों को देखना चाहिए। और धाम का एक अपना प्रभाव है, शास्त्रों में बताया गया जैसे एक व्यक्ति धूप में जा रहा है, कड़कड़ाती धूप है और अचानक से वो छाया में आ जाता है तो जो शांति मिलती है, वैसे ही इस भौतिक संसार में हमें भटकते रहते हैं हम लोग और जब धाम पहुंचते हो तो शांति मिलती है। आपने महसूस किया होगा जब आप धाम जाते हो आपका जप, आपकी चेतना, आपकी भावना परिवर्तित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है ना, अंदर में छुपी हुई होती है वो जो दुर्वासना है वो अंदर में छुपी हुई है, ऊपर से धाम का प्रभाव होता है जिसकी वजह से वहां सब अच्छे कार्य करते हैं। महसूस किया है वहाँ आपका जप अच्छा होता है, आपको सेवा करने का मन करता है, आलसपन कम होता है, मंगल आरती हम लोग बहुत तेज़ी से उठते हैं, क्यों, एक दिन धाम में मिला है चलो मंगल आरती अटेंड करते हैं, है ना, तो ये धाम का भाव होता है। और जैसे ही धाम से वापस आते हैं वही ढाक के तीन पात बोलते हैं ना आके, वैसे ही बैक टू हेल, बैक टू नर्क यहाँ हो जाते हैं आगे। तो कभी कभी ऐसा इल्यूजन हो जाता है, ऐसा भ्रम हो जाता है धाम में रहने के बाद कि मैं तो एडवांस हो गया हूँ, पर इसका पूरा क्लियरेंस हो जाता है यहाँ पर आने के बाद जब वापस आते हैं। ऐसे लोग मायापुर जाते हैं ना 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन के लिए जाते हैं तो वहाँ बड़ा चैंटिंग अच्छी होती है, चेतना अच्छी होती है, सेवा की भावना अच्छी होती है, दिल्ली आते हैं तो फिर वैसे हो जाता है। भक्त पूछते प्रभु जी यहाँ पर चैंटिंग मन लगता है, वहाँ तो बड़ा हो जाता था, वो क्या था, धाम का प्रभाव था। तो धाम का अपना प्रभाव है, पर फिर भी हम क्योंकि विशुद्ध चेतना नहीं हमारी, हम यहाँ से जब जाते हैं भगवत धाम में तो कुछ समय के बाद तो धर्म का प्रभाव रहता है, फिर अपनी चेतना को हम बाहर जब ले आते हैं तो हमारा मन नहीं लगता वहाँ पर। जब तक वह एंगेजमेंट अच्छा है, जब तक आप व्यस्त हैं भक्ति में तब तक आपको भक्ति अच्छी लगती है, धाम अच्छा लगता है, और जैसे ही व्यस्तता खत्म हो जाती है, कुछ वस्तु आपके लिए एंगेजमेंट नहीं है तो दोष दर्शन प्रारंभ हो जाता है। होता है ऐसा, जब वृंदावन जाते हैं खूब सारी सेवाएं करते हैं लेकिन जब अकेले रहते हैं तो नहीं होता। कोई हमेशा कभी अकेला गया है वृंदावन, कभी गए रजिस्ट्रेशन के लिए गए? मैं एक बार गया था, मैं जब प्रॉपर्टी का काम कर रहा था तो मैं जिनके साथ करता था तो उन्होंने भेजा था प्रभु जी ये पेपर्स लेके देने हैं किसी को, अजीब ही लग रहा था वृंदावन, कभी नहीं गया मैं भक्त बिना भक्तों के, कभी नहीं गया था, एक ही बार गया था उस समय अजीब लग रहा था, लग ही नहीं रहते वृंदावन, क्योंकि बिना भक्तों के जब वृंदावन जाते हैं, बिना आज्ञा गुरु के आगे के वृंदावन जाते हैं तो वह स्थान आपको एक स्थान लगता है, बस वृंदावन नहीं लगता, धाम नहीं लगता। जैसे एक बेसमेंट है, आपको बोले बेसमेंट है, बेसमेंट नहीं है धाम है, और पहले बताया गया था क्यों धाम है, या वो सब कार्य हो रहे हैं जो धाम में होते हैं, क्या हो रहे कार्य,
पूजा पाठ,
पूजा और पाठ, समरण और बंधन, आरतियां, वैष्णव का संग, साधु कथा, कीर्तन, श्रवणम, सभी अंगों का पालन हो रहा है स्थान में, तो ये धाम है, धाम में यही होता है ना। तो घर भी धाम हो जाता है। गृहते गोलोक भाये, जब एकादशी भजन गाते हैं ना तो भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलो का भाए, जिस दिन में अपने घर में कीर्तन करते हैं हम लोग, भजन करते हैं, वो दिन कैसे लगता है, गोलोक वृंदावन के समान लगता है, तो धाम बन जाता है। तो वो कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ या ब्रह्मचारी या कोई व्यक्ति बेस बनाने वाला या बेस के डिवोटीज है, वो बेस पर रहते हुए घर पर रहते दिन रात भजन करते हैं तो वो धाम है, धाम निवास तो आप रोज कर रहे हैं। अगर धाम जैसा बर्ताव कर रहे हैं घर में, तो घर में लड़ाई हो रही है, टीवी देख रहे हैं, झगड़े कर रहे, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो धाम नहीं है वो। धाम में क्या बताया गया? धाम अपराध दस। धाम अपराध क्या है? पहला अपराध है कि वृंदावन को और नवदीप को भिन्न मानना, अलग अलग मानना, पहला अपराध। दूसरा है बिना गुरु के आज्ञा के धाम में जाना, ऐसा धाम। वैष्णो टिकट बुक है किसी के पास यहाँ? दिया हुआ है। पवित्र तीर्थ स्थानों के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा तथा अपमान करना पहला धाम अपराध। अवज्ञा का मतलब यह हो कि बिना परमेश्वर के जाना, है ना। दूसरा, ऐसा मानना कि पवित्र तीर्थ स्थल अनित्य है, ये तो नश्वर है, कुछ दिनों बाद वृंदावन लुप्त हो जाएगा, ऐसा सोचना क्या है? धाम अपराध। तीसरा है, तीर्थ स्थान में रहने वाले लोगों पर अथवा वहां पर आए हुए यात्रियों पर जोर जबरदस्ती करना अथवा उन्हें सामान्य सांसारिक व्यक्ति मानना, धक्का मुक्की करना, वहां जाकर लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, कभी कभी रिक्शा वाले से बहस हो जाता है ना। 2500 रुपये मांग रहा है, आपने 20 की बात की थी, मतलब उन्हें 25 ही लगता है जी। आप अपना राशन 5 रुपये के लिए राशन पानी लेकर चढ़ गए, सोच के देखिए, क्या हम 5 रुपये यहाँ से नहीं कमा जाते हैं दिल्ली में? एक धामवासी को 5 रुपये ज़्यादा देने में क्या तकलीफ है? हमारे महाराज तो कहते हैं कि धाम में जाकर बार्गेन नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए, लो, क्या फर्क पड़ता 5 रुपये 10 रुपये के लिए, है ना। यहाँ तो हम लोग ऐसी दुनिया भर की चीज़ें खरीदते रहते हैं, एक एक कपड़े खरीदते हैं, एक जैकेट खरीदेंगे ठंड में, 1200, 1500, 2000, 3000 के जैकेट खरीदते हैं ठंड में, 5 रुपये देने में क्या तकलीफ है? तो इसलिए उनको संसारिक व्यक्ति नहीं माना, यहाँ तक कि जो यात्री आए उनको भी। पवित्र तीर्थ स्थान में रहते समय सांसारिक कार्य नहीं करना। सांसारिक कार्य क्या? जैसे पवित्र स्थान तीर्थ स्थान में रहकर सांसारिक कार्य नहीं करना, जैसे टीवी देखना, है ना, शारीरिक संबंध बनाना। कई लोग समझते पिकनिक स्थान है, घूमने गए, 3-4 दिन रहना है, पति पत्नी शारीरिक संबंध बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। धाम में जाए, आप धाम में गए, सोच के देखिए, कम से कम वहाँ पवित्रता का पालन करना चाहिए। फिर वहीं पर अपने कुछ मेकअप कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, लोगों को दिखाने, ये सांसारिक बात है ना। कभी भी हम जो श्रृंगार करते हैं, सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि भगवान को आकर्षित करें, है ना, किसी पुरुष या किसी स्त्री को नहीं। वहाँ जाकर सांसारिक कार्य बिल्कुल नहीं करना। कई लोग जैसे कई आप जाएंगे वहाँ होटल्स होते हैं, उसमें टीवी लगा होता है, लोग टीवी देखते रहते हैं। इतना आश्चर्यजनक बात है कि आप टीवी को छोड़कर ही धाम आए हैं और 2 दिन में टीवी को नहीं छोड़ पा रहे, है ना। तो कोई बोलेगा प्रभु जी फिर टीवी लगाया कि धामवासी उन्हें, तो आपकी परीक्षा के लगाया है, टीवी चला के थोड़ी बोले, यहाँ बैठोगे तभी रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। टीवी नहीं देखोगे तो आप अलाउड नहीं है, ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसा कहीं नियम लिखा रहता है? अगर यात्री टीवी ना देखें तो उसको रहना मना है, ऐसा नहीं लिखा रहता है। हम चालू करते हैं टीवी को, हम चैनल चेंज करते हैं, हम देखते हैं, है ना, तो नहीं देखना है। मूर्ति पूजा अथवा पवित्र नाम जप का व्यापार करना अथवा उसके माध्यम से धन कमाना। यहाँ से गए वहाँ बिजनेस खोले, एक शॉप खरीद ली, दुकान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोग कर सकते हैं धाम वहाँ से, पर हम नहीं कर सकते, तो हमको इसे अवॉइड करना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थान किसी भौतिक राज्य या प्रदेश का हिस्सा है ऐसा विचार करना, मथुरा नाम के डिस्ट्रिक्ट में वृंदावन नाम का स्थान ऐसा सोचना। भगवान के पवित्र धाम को अन्य देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थान के समान समझना। जैसे कई देवताओं का स्थान होता ना, ब्रह्म पुष्कर धाम और हमारा वृंदावन ऐसी एक ही एक कुल है, ये नहीं पवित्र या फिर वैष्णो देवी जो है वैसी है, ऐसा सोचना। पवित्र तीर्थ स्थान के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना, कितना किलोमीटर है, इतना सब कुछ है, प्रयास करना। कोई बोलेगा कि यह 84 कोस है, बोले बोले जी हमने तो पूरा सब कुछ देखा, किलोमीटर नापा है, 84 कोस आ ही नहीं रहे। कभी कभी भक्त बोलते हैं कि एक एक कदम जो होता है अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है,
कभी कभी भक्त बोल लेते हैं कि 100-100 असमय के बराबर होते के कदम। तो एक भक्त मैं से पूछ रहे थे, प्रभु जी आपने पिछली बार 100 बोला था, इस बार आप 1000 बोल रहे हैं, चेंज क्यों हो रहा है? ये तो महिमा बताई गई ना, इसका मतलब ही नहीं कि 100 बोले थे 1000 बोले थे चेंज हो गया, इसका मतलब ये तो मापना हो गया। अंदाज से बता देते हैं कोई व्यक्ति महिमा गुणगान करने के लिए, ऐसे बोलते हैं असंख्य भक्त हैं, असंख्य भक्त मतलब जिनको गिरा नहीं जा सकता। इसका मतलब नहीं कि भक्त जो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो है सारे भक्त ही हैं, कुछ भक्त है कुछ अभक्त है, लेकिन बताया जाता है असंख्य भक्त। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कितने ब्रह्मांड में है, लेकिन यहाँ कई लोग जो वैष्णव नहीं है, तो इस सबको मापना जो अच्छा नहीं है धाम में। और तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कृत्य करना, पाप करना जैसे चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, वृंदावन में जाकर झूठ बोलते हैं हम लोग, है ना, प्रसाद पा लिया, आपको गुलाब जामुन मिला है? नहीं, हमको कहाँ मिला है, गुलाब जामुन चक्कर में सब झूठ बोल रहे थे। बहुत ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। तीर्थ स्थलों के महत्व बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना, ये तो करते नहीं जनरली भक्त, तीर्थ स्थलों के महत्व बताने वालों को बोला अरे ऐसी दिया है इसमें कुछ संबंध करने बातें हैं इसमें, ऐसा बोलना। अश्रद्धा से तीर्थ स्थान के महत्व को काल्पनिक समझना, इनके महत्व जब बताते हैं बोलते हैं थोड़ा ना बड़ा चढ़ा के बताते हैं भक्त लोग, यहाँ पर तो ऐसे जाते हैं तो लोग बोलते हैं, अब जब बताओगे ना यहाँ पर तो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए शास्त्र के अनुसार अगर कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ किया है तो सिर्फ कौवा बन के वो जाएगा और बैठ भी नहीं पाएगा, उड़ के आ जाएगा उस क्षेत्र से, ऐसा शास्त्र बताया गया वृंदावन महात्मा में। तो कोई बोलेगा प्रभु जी तो हम लोग कैसे चले जा रहे हैं, हम लोग भी तो जा रहे हैं, तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, सब पता नहीं किस शास्त्र में दिया हुआ है, हम नहीं मानते बात को, हम कैसे आगे फिर क्या, हम लोग कौवा हैं और तो रुके हुए, हम लोग 2 दिन रुके भी हैं। तो चेतना की बात थोड़ी मैंने बताया कि कौवा उड़ के आ जाता है, मतलब वो कौवा चेतना से गया भी था, वो नहीं रुक पाया, हम तो चेतना में गए ही नहीं, हम तो घुसे ही नहीं वृंदावन में। तो कभी कभी ऐसी बातों को लोग श्रद्धा नहीं होती और ऐसे तीर्थ स्थानों के बारे में काल्पनिक समझते हैं, ये महत्व जो बताया गया है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इस बारे में समझना जरूरी है। और वृंदावन धाम जो बताया गया है, प्रभुपाद जी बोले कि इस्कॉन के मंदिर जो है वैकुंठ है, क्यों वैकुंठ है, क्योंकि यहाँ पर वही कार्य होता है जो वैकुंठ में होता है, भगवान राधा कृष्ण की पूजा अर्चना गुणगान कीर्तन श्रवण भागवतम वही सब होता है, इसलिए इस्कॉन के मंदिर कैसे हैं वैकुंठ है। और प्रभुपाद जी बताते हैं वैकुंठ यहाँ जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ चिंता नहीं है, और चिंता है तो सिर्फ एक ही चिंता है, क्या है, कैसे कृष्ण की सेवा की जाए, उसको कहा गया है वैकुंठ, कैसे विष्णु को तृप्त किया जाए अपने आप को नहीं। और भक्ति रसाम सिंधु में इसी ग्रंथ में आगे मिलेगा तो उसमें बताया कि वृंदावन को उस स्थान को बोलते हैं जहाँ द्वेष नहीं होता है, क्या नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, वो स्थान वृंदावन है। जैसे एक बेसमेंट, अगर आपस में द्वेष है तो वृंदावन नहीं है, धाम नहीं है। अगर हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, तो ये स्थान क्या है, वृंदावन नहीं है। अन्यथा जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वृंदावन है। वृंदावन का स्थान कैसा रहता है, जैसे तुलसी जी उसका पुष्प सार कहा गया है, पुष्पराज यह कहा गया है, पुष्पों में राजा तुलसी जी को, तुलसी की जो मंजरियां हैं, तो जब तुलसी जी को आगे किया जाता है सबसे आगे, सारे पुष्प क्या बोलते हैं, आप जाओ कृष्ण के शरण में, कृष्ण के चरण में, क्योंकि आप को कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं, आप कृष्ण को प्रिय हो, कृष्ण आपको प्रिय है, इसलिए आप जाओ आगे। राधा रानी को आगे कर देते हैं क्योंकि सब सोचते हैं राधा रानी को ज़्यादा पसंद करते हैं कृष्ण, ऐसा झगड़ा नहीं करती गोपियाँ कि मैं जाऊँगी, ऐसा झगड़ा नहीं करती हैं। वैसे ही हम में से कोई अच्छा गाने वाला है उसको गाने के लिए आगे करना चाहिए, कोई ड्यूटी वर्सिप अच्छा करता है उसको बोल आप करो पूजा करो आप करने में एक्सपर्ट हो, कोई मैनेजमेंट अच्छा करता है तो उससे मैनेजमेंट की सेवा ली जाती है ना। तो जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसको आगे करते हैं, यही है भाव द्वेष रहित होकर होने का। लेकिन अगर द्वेष रहेंगे तो कम सोचेंगे मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मैं करूँगा मैं करूँगा, वही क्यों है ना, उसी को क्यों दे रहा जा रहा मौका, क्या मैं इस लायक नहीं हूं, ऐसा सोचते हैं, ये द्वेष है ना। जैसे बच्चे के पास होता है, बच्चे को कुछ चीज दो तो वो बांट के खिलाता है, अकेले नहीं खाता, क्योंकि वो इनोसेंट होता है, उसके अंदर कुछ ये सब भेदभाव नहीं होता। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं हम सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, ये द्वेष की भावना है। ऐसे वातावरण में वृंदावन का वातावरण नहीं हो सकता। अपने आप को सुपीरियर समझना, द्वेष कब होता है? जब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ना, हम सोचते हैं हमसे अच्छे हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से हम लोग द्वेष करते हैं और सोचते हैं कि हम तुम्हारे अंदर तो द्वेष है ही नहीं, और फिर भी हम सोचते हैं हम वृंदावन में हैं, फिर भी सोचते हैं हम तो बड़े अच्छे बहुत अच्छे भक्त हैं। जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है तब उससे क्या बात करते हैं, आपकी चेतना क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बताइए इस सेंटर में कोई बाहर से कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है ना, तो सबसे पहले हम उससे क्या बात करनी चाहिए बताइए? भगवान के विषय में बात करेंगे, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछना चाहिए उससे? आप यहाँ आए हैं, क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? मैरुली में कहाँ रहते हैं? ठीक है, मैरुली में या तो वार्ड नंबर 8 में रहते हैं, वार्ड नंबर 6 में रहते होंगे, उसके आसपास रहते होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? मान लीजिए कोई यहाँ पर आएगा और बोलेगा वार्ड नंबर 6 के आसपास रहता हूँ, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? यहीं आया करो,
प्रोग्राम कैसा लगा?
उससे क्या बोलेंगे कि आप वार्ड नंबर 6 में रहते हैं तो वहाँ जरूर आइए, वहाँ हमारा एक सेंटर है भांडीरवन के नाम से। और मान लीजिए एक भांडीरवन में कोई व्यक्ति मिलता है और जो यहाँ आसपास रहता है, उसको क्या बोलेंगे? मुदुदुर में जाइए, एक सेंटर है अग्रवाल धर्मशाला के समक्ष, वहाँ पर आइए और वहाँ किसी व्यक्ति के नंबर दे देंगे, जोड़ देंगे। मुझे याद है जब मैं स्कॉन में जुटा था, पंचशील में हमारा प्रोग्राम होता था यूथ का, हम आईआईटी के स्टूडेंट को लेके जाते थे, तो जब भी मैं ले आता था वृंदावनवासी प्रभु मोहन रूप जी एक ही चीज बोलते थे, हमें इन सबको प्रभुपाद से जोड़ना है, हमें सब इनको गुरु से जोड़ना है, इस्कॉन से जोड़ना है। ये नहीं बोलते थे कि मुझसे जोड़ना है, इनसे जोड़ना है, पंचशील से जोड़ना है, इस मंदिर से जोड़ना है, उस मंदिर से जोड़ना है। आप समझे बात को, चेतना क्या है? तो मंदिर में भी ऐसे होता है, कोई यूथ आता है तो हम पहली बार मिलते हैं तो उनसे पूछता हूँ, हरे कृष्ण आप कहाँ से आए? बोले यहाँ से आए। अच्छा आप मंदिर में किसी को जानते हैं, किसी से मिले हुए हैं, किसी गाइडेंस में? बोलते हाँ प्रभु जी। किसके गाइडेंस में? इसके गाइडेंस में। हाँ उसके गाइडेंस में, आप तो बहुत अच्छे, वो तो बहुत अच्छे भक्त है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, ये विचार होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्प्रेशन डालते हैं उस पर अपना। कैसे इंप्रेशन डालते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। आप मेरे पास आया करोगे ना, आप बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा भक्ति कैसे करते हैं, बहुत सारे सीक्रेट बताऊंगा आपको, इतना तेजी से बढ़ोगे भक्ति में पूछो मत। वो सोचेगा मैं जिससे जुड़ा हुआ वो तो इतना बातें नहीं बताएगा, शायद ये बातें बताएगा। हम तो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं सुपीरियर हूं उस व्यक्ति से। वो सुपीरियर है या नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसी को उसके पास जोड़िए। मुझे याद है मैं जब एक बार मायापुर जा, 2004 की बात है, मैं जा रहा था मायापुर, रुक्मिणी कृष्णपुर चढ़ रहे थे ट्रेन में जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा प्रभु जी कुछ गाइडेंस लेनी थी मुझे आपसे प्रीचिंग के मामले में। बोले आप मोहन रूप से लीजिए, वो तो बहुत बड़े प्रीचर हैं, उनसे बात कीजिए। एक उत्तर भी नहीं दिया मुझे। मैंने बोला प्रभु जी मैं शायद पता नहीं मैं कुछ गलत पूछ लिया, या मैं पसंद नहीं आते हैं मुझे लगता है, पसंद नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोला। चलो मैं दूसरे प्रभु जी गया, पंजाबी बाग वाले, पंजाबी बाग के रुक्मिणी कृष्णपुर, सीतामन प्रभु थे अब तो नहीं हो, उनसे मैंने पूछा, बोलते आप मोहन रूप प्रभु जी से गाइडेंस लीजिए ना, वही रहते हैं आप तो। क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि जैसे वो कोई बात बताएंगे जो हो सकता है कि मोहन रूप जी के अनुकूल ना हो, उनकी बातों के अनुकूल ना हो, उनके विचारों के अनुकूल ना हो, या फिर कुछ उससे अच्छा तरीके से समझा दिया जाए, तो मेरी श्रद्धा में दरार आ जाएगी मोहन रूप जी के प्रति। आप समझे बात को? तो हमें एक दूसरे को क्या करना है, आपको सहायता करनी है कि उसकी श्रद्धा वहां ज्यादा बने जहां से वो जुड़ा हुआ है। समझे बात को? कई बात कई बार ब्रह्मचारी मंदिर के आते हैं कि प्रभु जी मैं वो काउंसलिंग ले रहा हूँ प्रभु जी से, अब आपसे लेना चाहता हूँ। बोला क्यों, वो भी तो अच्छे भक्त हैं, उनसे क्यों मैं नहीं ले रहे हो? बोलते नहीं प्रभु जी मुझे आपसे लेना है। बोला वो तो बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका गुणगान शुरू करता हूँ। तो धीरे धीरे वो कन्विंस हो जाते हैं, नहीं प्रभु जी ठीक है मैं आपसे ही बोल रहे हैं, मैं उन्हीं से गाइडेंस लूँगा। तो यही विचार होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं हाँ मैंने भी सुना उस टाइप के हैं वो, ठीक है क्या कर सकते हो आप तो फंस चुके हो प्रभु। अगर ऐसा कर रहे हैं तब कुछ नहीं, अपने लिए कब्र खोद रहे हैं आप, उस व्यक्ति को ही बर्बाद कर रहे हैं। वो व्यक्ति संस्था में नहीं जुड़े रहेगा, याद रखिए लंबे समय तक। समझ रहे बात को, किसकी श्रद्धा कहीं भी हो सकती है। जैसे वेद व्यास प्रभु मंदिर में आते हैं, वो रहते हैं पश्चिम विहार, पश्चिम विहार कहाँ है पंजाबी बाग के पास, वहां से आते ईस्ट ऑफ क्लास पंजाबी बाग मंदिर में नहीं आते, उनकी श्रद्धा वहां है। आप कोई पंजाबी वाला व्यक्ति व्यक्ति उनकी श्रद्धा यहाँ खराब कर दे तो ना पंजाबी बाग जाएंगे ना ईस्ट ऑफ क्लास। तो हमें किसी की श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो जहां जाना चाहता है वहां उसकी श्रद्धा बढ़ाइए। बोले आपको कहाँ अच्छा लगता है, बोले मुझे यहाँ अच्छा लगता है, हाँ वो तो बहुत अच्छा जगह है, तारीफ करिए उस जगह की, उस व्यक्ति की, उस स्थान की तारीफ कीजिए, तब श्रद्धा होगी। लेकिन अगर हम लोग आपस में ही लड़ मरेंगे यहाँ पर तो ये संख्या ऐसी रहेगी, इतने भी नहीं बैठेंगे लोग कुछ दिनों के बाद, तो कहाँ रहेगा ये धाम, कहाँ रहेगा वृंदावन। हम यहाँ पर आए हैं वृंदावन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग इस स्थान में लाभ उठा सके। अगर हमारा यहाँ आपस में मेल भाव अच्छा नहीं रहेगा तो क्या लोग यहाँ पर आएंगे? नहीं। अगर आपस में हमारा भाव अच्छा नहीं रहेगा, कोई यहाँ पर क्यों आता है? जब देखता है कि आपस में लोगों का मेल मिलाप अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, मधुर है, तभी वो जुड़ता है ना। उससे ये भी लोग भौतिक संसार के समान लोग हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में द्वेष करते हैं, चलो यहाँ से, वो चला जाएगा। होता है कि नहीं होता है? आप किसी व्यक्ति के घर जाओ, वो भी ऐसे निकले, किसी संस्था में जाओ, वहाँ भी आपको देखेगा सब लोग झगड़ा कर रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो आप उस संस्था में नहीं रुकेंगे, है ना। किसी मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर पुजारी जो हो वो भी उसी प्रकार का कार्य करो जो अन्य पुजारी करते हैं, तो आप वहाँ नहीं रहोगे। आप एक स्थान में जाते हो साधु को खोजने के लिए, एक स्थान में जाते हो एक अच्छे संयमी व्यक्ति को ढूंढने के लिए, एक स्थान में जाते हो जहाँ द्वेष नहीं है, ऐसे स्थान में जाते हो। और वहाँ पर अगर मान लीजिए सब नई चीज़ दिख रहा है तो आप वहाँ से चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, है ना। किसी व्यक्ति से मिले और 24 घंटों निंदा कर रहा है तो आप बोले ऐसे दूर ही रहना ठीक है। पर भौतिक संसार तो दुकान वाले ऑफिस वाले निंदा करते ही हैं, ये भी भक्त भी कर रहा है, क्यों रहो उसके सामने। हाँ समझे, आप किसी को कुछ मना नहीं कर सकते। मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति ने शिकायत की मोहन रूपो जी के बारे में कि आप लोगों को अपने पास बैठ के जप करने के लिए बोलते हो। तो प्रभु जी ने बोला मैंने कभी बुलाया भी नहीं, किसी को मना भी नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ जहाँ आपकी इच्छा वहाँ जप करो। तो लोग ऐसे शिकायत करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मन में द्वेष होता है कि वो सोचते हैं वो कहाँ वहाँ क्यों चला गया। समझ रहे हैं? तो हमारा द्वेष जो होता है वो दूसरे में कमियाँ ढूंढना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई कहीं से भी जुड़ा हो, कहीं भी भक्ति कर रहा हो और भक्ति करने के लिए तत्पर हो, बस वो जहाँ से जुड़े उसकी श्रद्धा बढ़ाओ, बस इतना ही करना है ना। तो अगर हमें धाम में निवास करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द्वेष हटाना पड़ेगा। ये द्वेष ही सबसे बड़ा बंधन है। आप द्वेष लेके वृंदावन में निवास नहीं कर सकते। आप 10 लाख का या 50 लाख की फ्लैट खरीद लीजिए, वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी वही कार्य करेंगे जो दिल्ली में कर रहे थे। दिल्ली में लोगों को आपस में लड़वा दिया, वहां भी जाके वहां धामों से भी लड़वा दोगे। तो सबसे पहले धाम में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्वेष है ना, ये भौतिक भावना हटानी पड़ेगी। और जगन्नाथपुरी के बारे में बताया गया यहाँ पर, जगन्नाथपुरी के निवासी को देवता कैसे देखते हैं, वैकुंठवासी जैसे चतुर्भुज दिखते हैं, हमें तो नहीं दिखते हैं क्योंकि हम ना देवता है न हमारी चेतना है जी, शंख के आकार का है, बताते हैं उसको, जो जगन्नाथपुरी है वो शंख के शेप का बना हुआ पूरी क्षेत्र, जो श्री क्षेत्र भी कहा जाता है उसको। और नैमिषारण्य में बताते हैं ऋषियों का समागम हुआ, तो शुद्ध गोस्वामी गंगा जी के बारे में बता रहे थे, गंगा जी जो है भगवान के चरणों से निकली है और तुलसी के सुगंध को लेकर निकलती है, तो गंगा का तट को भी पवित्र तीर्थ स्थल बताया गया है, इसलिए पूरी गंगा में जहाँ जहाँ बहती है उसके आसपास सिर्फ तीर्थ स्थल ही दिखेंगे आपको, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, उधर जाएंगे तो संगम, आगे जाएंगे तो हम लोग मायापुर के पास सब सारे से धाम ही है, गंगा सागर मेला वहाँ लगता है, धाम ही है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ गंगा बहती है उसके आसपास के स्थानों को क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थान कहा जाता है। तो इसलिए हमें एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे पहले धाम में अगर निवास करना है तो किस चीज़ के द्वेष रहित होने के लिए। द्वेष रहित कैसे हुआ जा सकता है, प्रश्न है आप लोग से, बताइए। शास्त्रों को पढ़ के गुणगान करना भी
है।
और
चैंटिंग करना,
सम्मान की इच्छा ना रखना। द्वेष रहित हो सकते हैं अपने सम्मान की इच्छा नहीं रखना, ये क्या मतलब है?
तभी तो द्वेष नहीं रखेंगे।
हाँ ठीक है, और द्वेष रहित कैसे हो सकते हैं?
अपने आप को विनम्रता ऐसे सोचना चाहिए कि मैं तो कुछ आता
नहीं, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, विनम्र बने रहना, कहने का मतलब मैं तो विनम्र हूँ, मेरे चरण दबाओ,
किसी की निंदा नहीं करना,
निंदा नहीं करना, द्वेष होगा तो निंदा करेंगे,
किसी की निंदा सुनना भी नहीं,
सुनना भी नहीं, सुनने से क्या होता है, निंदा सुनने से क्या होता है,
हाँ वैसे हो जाते हैं,
सुनने से निंदा सुनना निंदा करने के बराबर है। कैसे? एक व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिखा, आपने नीचे सिग्नेचर कर दिया, तो सुसाइड नोट किसका हो गया, जिसने सिग्नेचर किया है, वो बोला प्रभु जी वो बहुत घटिया इंसान है, आपने बोला हाँ, स्वीकृति दे दी, इसका मतलब आप भी निंदा कर रहे हैं, निंदा सुनना नहीं निंदा करना नहीं। द्वेष रहित और कैसे हो सकते हैं कैलाशपुर, बताइए। चांदों में
दूसरों को सम्मानित देना, अपने आप को तंगे के समान समझना,
सबसे छोटा मानना, ऐसा हो पाता है, बताइए। द्वेष रहित कैसे हो सकते हैं? क्षेत्र महाप्रभु से एक ब्राह्मण पूछते हैं, मैंने सभी भक्तों की निंदा की है, एक स्थान है उसको अपराध भंजन कुलिया कहा गया है, कुलिया मतलब शायद ग्राम या स्थान बोला जाता है, अपराध का भंजन किया जाता है, कोलद्वीप में स्थान पड़ता है, तो वहां पर क्षेत्र महाप्रभु से एक ब्राह्मण मिलने आया है और बोले मैंने बहुत निंदा की है वैष्णवों की, भक्तों की, अब मैं दुखी हो गया हूँ, मुझे मैं चाहता हूँ कि उससे उस अपराधों से मुक्त हो जाऊँ, तो बोले जिस मुख से आपने उस विष का पान किया था उसी मुख से आपने अमृत का पान कीजिए, जिस मुख से आपने निंदा की थी, निंदा के शब्द निकाले थे, उसी मुख से गुणगान करो उन भक्तों का, तब जाके शायद वे द्वेष से बच सकते हो। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, अभी क्या करना पड़ेगा, गुणगान, गुणगान के बारे में बोलना पड़ेगा। गुणगान करने के लिए क्या जरूरी है?
उसके अंदर अच्छाई
देखेंगे, अच्छाई देखेंगे नहीं कैसे गुणगान करेंगे, है ना, गुणी नहीं पता, पर आपका गुणगान कीजिए, गुणगान, ये बहुत गुणी है, ये बहुत गुणी है, बहुत गुणी है, गुण पता ही नहीं है, और गुण पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणों को, हाँ उनको उनके जीवन में जाकर पूछना पड़ेगा लोगों से, इनके क्या क्या गुण है इनके बारे में बताइए, गुण सुनना पड़ेगा, गुण देखना पड़ेगा, कैच द पीपल डूइंग राइट थिंग, लोगों को पकड़ो अच्छा करते हुए, बुरा करते हुए नहीं, अच्छा करते हुए पकड़ेंगे तो उनका गुणगान करेंगे, बुरा करते हुए पकड़ेंगे, हमेशा क्या होता है, कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, अच्छा कीर्तन कर रहा है तो ध्यान हमारा उस तरफ नहीं जाता है, जैसे उसने कोई एक लाइन गलत गा दी सब उसको तरफ देखते हैं, कैसे गलत, पता नहीं उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया, होता है ऐसा, किसी ने कोई गलती की सब फोकस हो जाता है उसकी तरफ, अच्छा किया तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई जाकर बोलता है प्रभु जी आपने कितना अच्छा गाया तुलसी आरती, आपने कितनी अच्छी मंगल आरती गाई, कोई नहीं बोलता है, बोलेंगे आपने वो एक लाइन छोड़ दी थी, आपने ठीक से उच्चारण नहीं किया था, आपने बीच में भक्ति देवी बोल दिया था। लेकिन तुलसी आरती इतनी अच्छे से गाया आदमी श्रद्धा के साथ, वो सब नहीं देखा है, गलत चीज। पूरे कपड़े में भी एक अलग सा दाग दिखता, अरे ये जो काला काला लगा हुआ है, अरे पूरी काली कोट पहनी, वो नहीं दिख रहा है आपने सचमुच। तो दोष देखने के कारण द्वेष उत्पन्न होता है, क्या द्वेष के कारण दोष उत्पन्न होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा गुणों को देखना और गुणगान करना पड़ेगा। तो हर बार हम लोग एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे गुणगान करने का, ठीक है अभी करेंगे, बहुत कठिन कार्य है। मुझे लगता है ना ये रोज कराना चाहिए, तो क्या होगा कि हर दिन लोग देख, कल भी होगा गुणगान करना, तो आज गुण देखेंगे पूरा दिन भर, है ना, गुण देखेंगे, परसों होगा गुण देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। अब रोज रोज को तो नहीं बोले ना, आप रोज ही बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अरे कुछ नया बोलो, रोज वही बोलते हो नहीं तो रेडी हैं आप लोग गुणगान करने के लिए। पिछले बार एक भक्त बोल रहे थे प्रोजी बहुत लंबा समय मिलता है, कुछ बड़ा मुश्किल होता है, कुछ शब्द ही नहीं मिलते हैं बोलने के लिए। हाँ तो ये आदत डालना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा खाता नहीं है तो उसको क्या किया जाता है, उसको मानते हैं कुछ बीमारी है तो जबरदस्ती खिलाया जाता है, जबरदस्ती जब खाने लगता है उसको खाने की आदत पड़ जाती है। बचपन में बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खिलाया जाता है जानबूझ के, क्यों पता है, उसका जो अमाशा है ना लीवर का साइज बड़ा हो, क्योंकि उम्र के साथ लीवर जल्दी से बड़ा नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसका लीवर सबसे बड़ा होता है शरीर का भाग, बाकी सब छोटे होते हैं, सिर और लीवर बड़ा होता है, बाकी सब पैर हाथ सब छोटे होते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ता सब बड़ा होता है, लेकिन लीवर बड़ा नहीं होता है, लीवर थोड़ा सा बढ़ता है बस। तो इसलिए उसको लीवर को खिला खिला उसका लीवर बड़ा किया जाते हैं, क्योंकि नहीं तो बड़ा होने के बाद वो मात्रा उतनी खाएगा जितना बचपन में खाता था। तो वैसे ही हम सब इन्फेंट हम बच्चे हैं, तो हम लोग शुरू में जबरदस्ती गुणगान करवाया जाएगा, गुणगान करने की आदत पड़ जाएगी तो नेचुरली गुणगान करेंगे। अभी गुणगान करने के लिए एक मनवंतर गुजर जाता है तब भी गुण दिखते नहीं है, एक युग बिक जाता है, एक चतुर्युग बिक जाता है, गुण दिखते ही नहीं है, सब बुराइयाँ बुराइयाँ दिख रही है। बुराइयाँ क्यों दिख रही है, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयाँ हैं। भक्त तो सिर्फ आईना है जिसमें हमारे अवगुण दिखते हैं, ठीक है, तभी हम लोग गुणगान करेंगे एक दूसरे का। तो दो एक्टिविटी है गुणगान करने का। पहला एक्टिविटी है आप अपने कॉपी में, अगर आप लेकर आए हैं तो उसमें लिखिए उस व्यक्ति का नाम जिससे आप कहीं ना कहीं अनजाने में द्वेष करते हैं। मैं देखूंगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। और उसके कम से कम 5 गुण लिखिए, ठीक है,
जिससे हम द्वेष करते हैं उसके बारे
में। हाँ तो बोल रहा ना, किसी से शेयर नहीं करना अभी, मैं तो बता ही नहीं रहा तो अच्छा है ना, क्लियर हो जाएगा आपको, ये भी डर है ना कि देख ना ले। चलिए छुपा के लिखिए, कोई बात नहीं, पड़ोसी बताएंगे नहीं किसी को। तो लिखिए उसका नाम, लिखिए नाम नहीं लिखिए तो सिर्फ मन में तो जान सकते हैं ना आप, उसका गुण लिखिए 5, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। लिखिए लिखिए आप भी लिखिए, सही तो है लेकिन लिखिए आप भी। किसी को पेपर चाहिए, पेन चाहिए, जो लोग नाम की जरूरत नहीं है, उसका गुण ले लीजिए, गुण से पता चल जाता है कि वस्तु क्या है, है ना। पेन दे दीजिए, देखिए नाम जो वाह, अगर आप सोच रहे हो कि किससे है तो बहुत उन्नत व्यक्ति हैं। द्वेषी के नाम तो हमेशा मन में रहते हैं, जिससे द्वेष करते हैं उसका नाम तो तुरंत याद आ जाएगा।
बाहर के किसी मंदिर के बारे में,
किसी की, किसी के बारे में, खासकर भक्तों के बारे में लिखे तो अच्छा है, ज्यादा अच्छा, यहीं के भक्तों थोड़ा भी द्वेष करते हैं कहीं में उस। अब द्वेष को कैसे पहचानेंगे बताऊं? एक बार सुन लीजिए, एक मिनट कैलाशपुर सुन लीजिए, कैसे पता चलेगा आप उसे द्वेष करते हैं? जब उस व्यक्ति का गुणगान होता है तो आपको कैसा लगता है? जिस व्यक्ति को अवार्ड मिलता है तो आपको कैसा लगता है, है ना? जब आपको बुरा लगता है और उसके बाद आपको सुना नहीं जाता, उस व्यक्ति को सुन लिया गया है, तब आपको उसके प्रति कैसा लगता है? समझे बात को? जब आपका पक्ष नहीं लिया जाता है, उसका पक्ष लिया जाता है, तब आपको कैसा लगता है? तो ये सब लक्षण है द्वेष के। समय आपका पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, इसका मतलब द्वेष।
प्रभु जी ऐसा भी तो होता है ना, किसी को देख
देख
के पता नहीं क्यों गुस्सा
द्वेष है
सारे टाइम ही आता रहता
है। कभी तो द्वेष ही है। लिखी लिखी हम सबको द्वेष है, एक व्यक्ति से तो द्वेष हम सबको है, हम सबको कृष्ण से द्वेष है, इसलिए हम धाम छोड़ के यहाँ आए। तो कोई ये नहीं बोल सकता मैं द्वेष रहित हूँ, हम द्वेष से पूर्ण है, इसलिए तो यहाँ है। जब तक ये द्वेष खत्म नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे हम लोग इस नरक में, द्वेष को समाप्त करके जा सकते। नहीं, दया भी तो होनी चाहिए ना।
नहीं, दया तो
जैसे हमारे घर का कोई बच्चा हो गलत काम कर रहा है तो हम थोड़ी द्वेष करते हैं।
लेकिन जो द्वेष होता है जो अपने से सुपीरियर होता है ना हर चीज के अंदर, उसी से द्वेष होता है,
क्योंकि हमको लगता है हमारा पोजीशन डाउन हो रहा है,
हमसे अच्छा लेक्चर करता है,
तो बोला हमको लगता है हमारा पोजीशन डाउन होगा, हमारी इज्जत नहीं होगी,
उसी से द्वेष होता है।
हाँ, तो कोई दिक्कत क्या है? वो क्या आपको जिससे द्वेष करते उसके बारे में लिखना है? हम उसको सुपीरियर मानते नहीं ना, चक्री है, इसलिए तो द्वेष करते हैं। तो सुपीरियर तो मैं हूं, मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूं, वो अभी भी आया, बड़ा सम्मान बन गया है ना, बड़ा सम्मान हो रहा है, उसकी तारीफ होती है, हमारे बारे में तो कुछ बोलते नहीं लोग, तो ऐसे सोच के द्वेष करने लगता है, जबकि उसका बेचारे को कोई दोष ही नहीं है। ऐसे ही होता है। लिखिए लिखिए, क्योंकि द्वेष तो हम करते हैं, पहले तो मानना पड़ेगा हम द्वेष किसी न किसी से करते हैं, पर अब चेक करना पड़ेगा किससे करते हैं। आप द्वेष नहीं करते तो शुद्ध भक्त हैं, लिखना पड़ेगा।
और जो अपने से छोटे होते हैं उनसे भी अगर गुस्सा आते रहते हैं?
नहीं, हम लोग जैसे देख किसी के प्रति दया है ना, वो एक अलग बात है। जैसे माता अपने बच्चे से दया करती है कि साफ सफाई से नहीं रहता है, स्कूल नहीं जाता है, गुस्सा करती है, वो एक अलग भाग है, वो एक दया का भाव है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अच्छा हो जाए, वो अलग भाव है। वैसे करना तो गलत नहीं है, लेकिन ये द्वेष करना कि वो नीचा हो जाए, मैं अच्छा हो जाऊँ, ये द्वेष है। या वो उसको क्यों उतना तारीफ मिलती है, छोटा है तो क्या हुआ? कभी कभी हम लोग छोटे भाई बहनों से भी द्वेष करते हैं, छोटी बहन या छोटा भाई है वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है या अच्छे जॉब में है, तेजी से बढ़ रहा है, तो हम लोग द्वेष करने लगते हैं। या माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं उनसे, ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी हम लोग द्वेष करने लगते हैं। उसी को सब कुछ उसी को देते हो, हमें तो देते नहीं हो कुछ, हमें तो कभी प्यार नहीं किया, हमें तो कभी घुमाने लगे, हमारे लिए तो गिफ्ट लाया नहीं, तो भी तो द्वेष ही यार। ठीक है, माँ बाप है, आपकी बहन है, आपका भाई है, सोचिए हम में से किसी का लॉटरी लग गया 1 करोड़ रुपए का, तो हमें तो खूब डांस करना चाहिए, हमारे मित्र का, हमारे डिवोटी का 1 करोड़ रुपए लगाया, कम से कम 1 करोड़ हमारे डिवोटी के पास ही तो आया, लेकिन हम सोचते अरे उसका 1 करोड़ लग गया, ऐसे कुछ डाका डाला होगा, पता नहीं क्या है, तो ये द्वेष। लिख लिया, वो तो डायरी भरते हैं, कॉपी भर जाएगी, नई कॉपी लेनी पड़ेगी। लिख लिया, हाँ अब बोलिए, सिर्फ गुण बोलिए।
वह बहुत अच्छा कीर्तन करती है, वह बहुत
पता चला है कौन है,
समझाती है, वह कभी किसी का पक्ष नहीं लेती, वह कभी गलत बात नहीं करती।
सचमुच ऐसा व्यक्ति है कोई?
और वह कभी गलत संगत नहीं करती, और वह प्रभु जी है ऐसा।
तो इसका मतलब द्वेष करते हैं उनसे? एनीवे बोलिए प्रभु जी।
वो अच्छा आदमी है, दिलदार आदमी
है। दिलदार है, वेरी गुड।
भक्तिमान है, किसको सपोर्ट नहीं करता है
नेचर। और
कीर्तन को अच्छा कीर्तन करता
है। ठीक है, हम बोलिए।
बहुत अच्छी है, डेली मंगला आरती में आती है, इसका ध्यान रखती है, मुझसे अच्छे से बात करती है, मेरी हेल्प करती है, पर पता नहीं क्यों मेरे को उनको देख के द्वेष आता है।
चलिए बोलिए।
सेवा बहुत करते हैं और कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं।
अरे अरे बोलिए प्रभु।
आध्यात्मिक कार्य में कुशल
है,
बातों को अच्छी तरह समझाते, नर्म है, अपने व्यवहार में नर्म है,
नम्र है,
नम्र है।
पंक्चुअल है,
अच्छा
करते
हैं,
कैलाश पुर
अपनी ओर आकर्षित करने का अच्छा गुण है, जन समुदाय एकत्रित करना एक अच्छा गुण है, एकत्रित करना अच्छा गुण है।
क्या कित करना?
फंड। किसी कार्य को सीखने के लिए प्रति अच्छी लगन है, सांसारिक स्थिति को पूरा पूरा अपने लिए लाभ उठाने का अच्छा गुण।
प्रचार अच्छा करते हैं और सहन शक्ति बहुत अच्छी है, हम्बलनेस बहुत आता है, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो भी सहन कर देते हैं, मतलब इतना सोचते नहीं या वापस रिप्लाई नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है
सब लोगों से। बोलिए। आवाज तो कोई है बाहर बहुत है, एक दिन जरूर अंदर आएंगे वो सब। आपके भी नहीं है, आपने बोल दिया। और उषा माता जी, हाँ बोली।
खाना अच्छा बनाती है, जो तो अच्छे से रखती है, साफ सुथरा,
तो
भी साफ सुथरा रखती है, और मुझे भी बड़ा आदर देती है, और गीता पढ़ने से
करती है। अरे अरे बताओ कितने गुण है जिनसे हम द्वेष करते हैं, इतने गुण बताए लोगों के बारे में हम लोग। हाँ जी बोलिए। नहीं द्वेष नहीं है किसी से। माता जी आप बताएंगे किसी के बारे में?
कीर्तन अच्छा करते हैं, भक्ति के विषय में बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, और प्रेम करते हैं, सबको आदर सम्मान देते
हैं। मुझे लग रहा है कई लोग सिर्फ गुण बता, द्वेष नहीं करते, सिर्फ गुण बता रहे हैं ना, ऐसे भी है, चलेगा। तो गुण हम लोग को जरूर देखना चाहिए, हमारे पास देखो इतना समय मिला लेकिन गुण नहीं लिख पा रहे हैं, तो गुण लिखने का या उसको नोट करें, कैच करें, ढूंढें क्या क्या गुण हैं। अभी देखो हमारा मन जो है सोचने को मजबूर हो गया कि क्या क्या गुण हैं। एक फोर्स आ रहा हमारे पर, बुद्धि पर, हमारे मन पर, कि सोचें गुण क्या है। ऐसा होता है? जनरली ऐसा नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल जाता है। मतलब कुछ एक्सरसाइज कराया जा रहा है गुण देखने के लिए, जबकि एक नेचुरल होना चाहिए गुण देखना। जैसे हमारे अमोघ लीला प्रभु को जानते हैं आप, तो अमोघ लीला प्रभु के स्वभाव ऐसी है, बिल्कुल सब पे गुण ही देखते हैं, बिल्कुल कोई द्वेष नहीं है। तो उनके अलमीरा जो ना कबड हमेशा खुला रहता है, और वो बहुत सारी चीज़ें खरीद खरीद के ना खाने की चीज़ें वो रख देंगे उसके अंदर। तो ब्रह्मचारी को भूख लगता है, वो ढूंढते रहते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है खाने के लिए। तो सब उनकी अलमारी खोलते हैं, लोग खाते हैं, उसमें जितना मर्जी खा लो, वापस कबड को ऐसे बंद कर देते चले जाते। तो मैंने एक दिन पूछा, मतलब प्रभु जी आपका भक्त लोग इतना सब खा जाते हैं आपको? मतलब प्रभु जी भक्ति तो खाते हैं, मेरा पैसा है नहीं, है भगवान का, इसको कौन दे रहा है पैसा? खा भक्त रहे तो सेवा है ना। आप सोचिए स्वभाव कैसा है, आपको कुछ नहीं संसार में, और ले भक्त रहे हैं, है भगवान का और भक्त ले रहे हैं, आप उसके माध्यम बन रहे हैं, कितना प्योरिफिकेशन वाला कार्य। इसमें द्वेष कहां से, टेंशन कहां से हो गया, इसमें गुस्सा कहां से, क्रोध कहां से? खाना कोई आपका प्रसाद उठा ले और ले ले तो भक्त तो ले गया ना बस। तो बोले मैं बोला प्रभु जी आपका, आपको मैंने एक पेन दिया था अच्छा वाला, वो कहाँ गया? कोई भक्त ले गया होगा बोलते। हम बोलते कोई 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 लोग ले गए होंगे, एक व्यक्ति ले गया होगा। वो बोलते कोई भक्त ले गया होगा। ठीक, अगर हमारा कोई धन, हमारे कोई वस्तु भक्तों के बीच में ही तो गया है, फिर चिंता किस बात की? किसी भक्त ने ही प्रयोग कर रहा होगा। लेकिन अगर परेशान हो गया हम सुन लेकर, इसके मतलब अवगुण देखते हैं उसके अंदर। तो वैसे ही हम, वैसे ही विचार होना चाहिए, हम सब के अंदर क्या देखें, अच्छाइयों को देखने का प्रयास करें। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हमारी अच्छाई देखने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पूरे सप्ताह आप वॉच कीजिए, क्योंकि मैं एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ, इसमें आपको बोलना है इंस्टेंटली, लिखना नहीं, लिखने में तो थोड़ा सोच के लिख लिया आप लोग, इंस्टेंटली बोलना है तो बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, कम से कम आपको 5 व्यक्ति के बारे में गुणगान करना है, कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा जितना कर लो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम आपको एक एक्टिविटी कराई जाएगी, जिसमें मैं बताऊंगा नहीं इसे क्या करने वाला एक्टिविटी में, लेकिन आपको गुणगान करना पड़ेगा कम से कम मिनिमम 5 लोगों का। ठीक है, सब लोगों करना है, सब ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, गुण देख के आइएगा। आधा घंटा एक घंटा भी लग सकता है, आप लिख लीजिए, मत लिख दिए आपकी इच्छा नहीं, लेकिन कम से कम 5 लोगों के बारे में बोलना है।
5 minutes, 5 minutes.
नहीं ज़्यादा लगेगा सर, 20-25 मिनट लगेगा, एक एक आदमी, एक एक आदमी को देंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न, उनको आने के लिए जगह दे दीजिए, तब तक प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बताइए। कल गए थे, बहुत अच्छा था वो। वो एक्चुअली वहाँ पर धाम का वातावरण बनाया गया है, तो अच्छा लगता है। वहाँ राधा कृष्ण झूले में बैठे हुए हैं, सुंदर सा वातावरण है ना? गए थे आप? अच्छा लगता है। सोने जो जमीन है, धूल है, वो सोने की धूल है। मुझे देखा आप लोगों ने, बहुत सुंदर है।
अगर प्रभु जी किसी को ऐसे बोलो कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो सब बोलते कि ड्रामे कर
रहे हो। चाहिए नहीं मतलब?
जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी या ये सब चीजें, तो मुझे नहीं चाहिए मेरे को।
नहीं बोले, एक्शन भी होना चाहिए ना, एक्शन में हो तो कोई ड्रामा बोल नहीं। एक्चुअली चाहते हैं, अगर वो एक्शन में भी है तो कितना दिन ड्रामा समझेंगे लोग, वो देखेंगे सच में इसको व्यक्ति को नहीं चाहिए। वैसे वैसे वस्तु को नहीं चाहने का मतलब है कि वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना। मोबाइल रखना गलत नहीं है, पर मोबाइल कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। लैपटॉप रखना गलत नहीं है, लैपटॉप कृष्ण की सेवा होना चाहिए। घड़ी रखना गलत नहीं, घड़ी कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। तो नहीं चाहने का मतलब यही है कि उसको उससे आसक्त नहीं होना। जब वो खुम हो जाए, खो जाए, तो रोना धोना नहीं जाता, ये आसक्ति करना। हाँ, लेना नहीं का मतलब एक और होता है, कोई प्रेम से दे तो लेना भी चाहिए। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम् मख्यते अख्याति प्रक्षति भुङ्क्ते भोजते षड्विधि प्रतिरक्षणम्। रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति उसमें उपदेशामृत टेक्स्ट नंबर 3, उसको बोलते हैं ददाति प्रतिगृहणाति, दोनों होना चाहिए। प्रेम तो तभी होगा ना। सपोज आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है, आपको आपसे जब आपसे कोई मांगा, जब उसने खुद दिया, तो आप बोले मेरे को नहीं लेना तुमसे, तो प्रेम नहीं होगा। फिर प्रेम की परिभाषा यही है कि लेन देन दोनों होना चाहिए, लेना और देना दोनों जरूरी है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। कोई गिफ्ट दे, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आगे ट्रांसफर कर दो उसको गिफ्ट को, पर लो। जैसे हम सड़क से जाते हैं तो कई लोग जूस के पैकेट देते हैं, हम जूस के पैकेट बाहर का नहीं पीते, या उन्होंने अपने घर में कुछ बनाया होगा, कचौड़ी समोसा ब्रेड पकौड़ा, सड़क पे जब रथ यात्रा होती तो बांटते हैं हम लोग, तो कोई देता है लीजिए तो हट हम नहीं खाते, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं लाइए लीजिए हरे कृष्णा, उस बड़ी श्रद्धा से दिया है, हम उसको लेते हैं, किसी सड़क में दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं जो ऐसा आया हुआ श्रद्धालु, उसको दे देते, जो भक्त नहीं है, तो कम से वो खाया खुश रहेगा, पर लेते जरूर, तो लेना चाहिए, नहीं तो उसकी श्रद्धा खराब होगी ना। उतने प्रेम से बनाया और दिया है तो बोलेगा कि मेरा तो कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, फिर किसी साधु को नहीं देगा, किसी व्यक्ति को नहीं देगा। वैसे देना भी चाहिए, आपके पास जो वस्तु देने लायक है वो दो, जो दे सकते हो आप, हाँ आप उनको समय दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, कुछ आपके पास धन है वो वस्तु दे सकते हो, प्रसाद दे सकते हो, तो लेन देन होने होगा तभी प्रेम होता है, बिना लेन देन के प्रेम नहीं होता। इसलिए तो समाज में देख त्यौहार होता है कि आप लेन देन करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, कपड़े देते हैं, है ना, बांटने से प्रेम फलता है। वो भी गलत है, लेना भी चाहिए, नहीं तो फिर उसको लगेगा कि ये हम शायद मैं अच्छा नहीं पसंद नहीं करते मुझे, तभी तो मुझसे नहीं ले रहे, तो वो तो दुखी हो गया ना, सो दुखी कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण।